ایپ ہے SBS ہندی کے ساتھ, اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر.
आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ. न्यू साउथ वेल्स में आकस्मिक बाढ़ की चेतावनी जारी. भारतीय प्रधानमंत्री ने की यूक्रेनियाई राष्ट्रपति से फोन पर बात. और सिडनी यूनाइटेड के एक प्रशंसक पर लगा आजीवन प्रतिबंध. और अब खबरें विस्तार से. न्यू साउथ वेल्स आपातकालीन सेवा मंत्री स्टेफ कुक ने कहा है कि राज्य के अधिक बारिश पा रहे इलाकों में आकस्मिक बाढ़ का खतरा बन सकता है. पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में इस हफ्ते तीन मौसम प्रक्रियाएं बारिश लेकर आ रही हैं. बता दें कि न्यू साउथ वेल्स के आंतरिक इलाके पहले ही भारी बारिश की मार झेल रहे हैं. मंत्री कुक का कहना है कि बढ़ती बारिश के साथ आकस्मिक बाढ़ का खतरा भी बढ़ेगा.
Our catchments are completely saturated. Our soils, our landscapes are saturated. Our dams are full, our rivers, our channel systems are full to the brim. So any extra rainfall is likely to increase the risk of both riverine, but more importantly with respect to this latest weather system, increase the risk of flash flooding.
न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे का कहना है कि उनकी सरकार वरंगाम्बा डैम को 14 मीटर ऊंचा करने के काम को तेजी से बढ़ाएगी. ये घोषणा तब आती है जब मौसम विभाग ने राज्य में महीने भर के बराबर की बारिश का अंदेशा अगले कुछ ही दिनों में होने के लिए दिया है. डोमिनिक पेरोटे का कहना है कि बांध की ऊंचाई बढ़ाने के इस प्रोजेक्ट के कई फायदे हैं.
The importance of this project for saving lives and protecting property. The fact that we would have evacuations reduce from 90,000 to 14,000. Projects like this will save lives for generations to come. The time for talk is over, the time for delivery is now, and that's why on the advice from Water New South Wales, we have made this decision. It is the right decision.
साउथ ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश और तूफानी हवाओं के बाद लगभग 5,000 बिल्डिंगों में बिजली नहीं लौटाई जा सकी है. साउथ ऑस्ट्रेलिया पावर ने करीब 60 नेटवर्क आउटेज की रिपोर्ट दी है, जिसमें अधिकतर शहरी एडिलेड और बरोसा वैली स्थित संकाय हैं. तूफान के चलते कई सड़कें भी अवरुद्ध हो गई हैं. प्रशासन का कहना है कि राज्य आपातकालीन सेवाएं करीब 400 हादसों पर मदद कर रही है, जिसमें पेड़ गिरने के हादसे सबसे अधिक हैं. ब्रिस्बेन की एक मस्जिद के खिलाफ धमकी देने वाले एक व्यक्ति को बेल पर रिहा कर दिया गया है. 30 साल के इस व्यक्ति पर उपद्रव करने के इरादे से हथियार रखने का आरोप लगाया गया है, और ये माह के अंत में अदालत में पेश भी किए जाएंगे. अली कादरी क्वींसलैंड के मुस्लिम समुदाय के प्रवक्ता हैं. उनका कहना है कि ये जरूरी है कि अगर लोग गुनाह करें तो उन्हें उसकी सजा भी मिले.
There are elements in our community who are doing this and are thinking it's okay to do so. So unless and until they're publicly called out and criticized and punished for their actions, it, I believe, will be an encouragement for them to do so.
Discount supermarket chain Aldi पर मिलियनों डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है. फेडरल अदालत ने ये पाया है कि Aldi ने अपने वेयर हाउस कर्मचारियों को कम वेतन भुगतान किया था. अदालत ने पाया कि Aldi ने अपने कर्मचारियों को रोस्टर समय से 15 मिनट पहले काम शुरू करने के आदेश देकर रोजगार कानूनों का उल्लंघन किया है. कंपनी के सिडनी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर कर्मचारियों को सुरक्षा जांच जैसी कई और काम अपनी शिफ्ट शुरू होने के पहले करने होते थे. रिटेल एंड वेयरहाउस यूनियन का दावा है कि Aldi ने कर्मचारियों से शिफ्ट से 10 मिनट पहले काम करने के आदेश के द्वारा लगभग 10 मिलियन डॉलर तक का वेतन चुराया है. उनका कहना है कि इस फैसले का असर करीब 4,000 वर्तमान और भूतपूर्व कर्मचारियों पर पड़ेगा. और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार. फिलीपींस के मनीला में एक रेडियो पत्रकार की हत्या के बाद मीडिया हाउस सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. 63 वर्षीय अनाउंसर परसीवल मसाबा को मनीला के लापिनिया रिहायशी इलाके में दो हत्यारों ने मार डाला है। इससे पहले मध्य फिलीपींस में रेडियो पत्रकार रे ब्लैंको की हत्या कर दी गई थी। पिछले 35 साल में फिलीपींस में करीब 187 पत्रकार मारे जा चुके हैं, जिनमें 32 2009 के एक हत्याकांड में एक साथ मारे गए थे। एक प्रेस फ्रीडम रैली में बात करते हुए नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के अध्यक्ष जोनाथन डी सैंटोस ने कहा कि पत्रकारों की निर्मम हत्या दर्शाती है कि सरकार सुरक्षा देने में विफल रही है।
Under Marcos administration, we were hoping that it could be a fresh start, but this shows, but this attack shows that the same conditions that existed under Duterte are still here, and this is a challenge for the new government to show that they do respect press freedom, that they understand the role of journalists, and that they will protect us while we do our jobs.
कोलंबिया की सरकार और वामपंथी नेशनल लिबरेशन आर्मी विद्रोही संघ ने एक बार फिर शांति वार्ता की पहल की है। हुआन मैनुअल सैंटोस की पूर्व सरकार और विद्रोही गुटों के बीच 2019 में इक्वाडोर में वार्ता शुरू तो हुई थी, लेकिन सैंटोस के उत्तराधिकारी इवान ड्रिक ने ये वार्ता विद्रोही गुटों के हिंसक रवैये को देखते हुए बंद कर दी थी। विद्रोही गुटों ने 22 पुलिस कैडेट को एक बॉम्ब धमाके में मार दिया था। ऐसा बताया जा रहा है कि अब शांति वार्ता नवंबर के पहले हफ्ते से फिर शुरू की जाएगी। कोलंबियाई सरकार की ओर से शांति के उच्च आयोग इवान डेनिलो रुएदा का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ये पहल अब सफल होगी।
Dialogue cannot be rhetoric. The dialogue itself must express changes. And this peace delegation has expressed and given us elements of deep trust.
और अब खबरें भारत से। बीते दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की और रूसी सेना से जूझ रहे पूर्वी यूरोपियाई देश में परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर चिंता भी जताई। दोनों नेताओं ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा आंशिक लामबंदी की घोषणा के लगभग दो सप्ताह के बाद बात की है। श्री मोदी ने कहा कि युद्धग्रस्त रूस यूक्रेन के बीच किसी भी तरह के शांति प्रयासों में योगदान के लिए भारत तैयार है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शत्रुता को जल्दी समाप्त करने और बातचीत और कूटनीति के मार्ग को आगे बढ़ाने की आवश्यकता के लिए अपने आह्वान को दोहराया है। उन्होंने अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता, वहीं शांति प्रयास और योगदान के लिए भारत की तत्परता से अवगत भी कराया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस के बीच चल रहे टकराव के बारे में चर्चा भी की। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि वहां टकराव जल्द समाप्त होना चाहिए और बातचीत तथा राजनयिक तरीके से विवाद का समाधान होना चाहिए। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 52.87 रूपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 65 सेंट थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। एक सिडनी यूनाइटेड 58 के प्रशंसक को त्वरित प्रभाव से आजीवन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। जांच में यह पाया गया था कि शनिवार को हुए ऑस्ट्रेलिया कप के फाइनल मैच में उन्होंने एक फासिस्ट सल्यूट दिया था। फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया ने इस बारे में भी जांच लगाई है कि क्लब के क्या बाकी क्लब के क्या बाकी प्रशंसक भी इस तरीके के सल्यूट या गीत गाते पाए गए थे। और अब अंत में एक नजर कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 19 जबकि न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल हल्की बारिश रहेगी, अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में बारिश बढ़ने के आसार हैं, अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में तेज बारिश का अनुमान है, अधिकतम तापमान 16 जबकि न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में भी बारिश रहेगी, अधिकतम तापमान 20 जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में भी बारिश की आशंका जताई गई है, अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में बारिश के साथ तूफान बताया जा रहा है, अधिकतम तापमान 33 जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बारिश बताई जा रही है, दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं।